ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। हम जब गुरु महाराज की शरण में चले गए तो थोड़े ही समय बाद अब साधु हो गए हैं। 3-4 महीना बाद जो पुराने मित्र थे, जिगरी मित्र थे, वो दिखाई पड़े। बोले यार चलो घूम लें जंगल। चल दिए। अब वो अंतरंग मित्र थे, उनके साथ जाने में कोई संकोच नहीं। चले गए जंगल में। वहां एक शस्त्रागार और एक 20-25 फीट चौड़ा गेट, उतना ही ऊंचा, जाते ही ऑटोमेटिक खुल गया। चारों तरफ शस्त्र रखे, शस्त्रों की चमक से उसमें जैसे 25 ट्यूबलाइट जलती हो उतना प्रकाश। उसके बीच में चले गए। बहुत बड़ा शस्त्रागार है उसमें। जब हम बीच में पहुंचे तो चारों मित्र तो हमारे पास से फैल गए चारों तरफ और एक एक शस्त्र निकाल लिया। बोले देखते क्या हो, मार डालो हमको। तब हमारी समझ में आया। हम बोले एक बार इनसे बच जाते तो इतना भजन करते कि इनकी पकड़ के हम बाहर हो जाते। मन में सोच रहे हैं। हम बोले एक बार छोड़ दो। अब वो मित्रता गई लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे। आस्ते आस्ते शस्त्रागार फट गया, फट के दूर चला गया और मित्र चारों तरफ से घेरते चले आ रहे और हम बीच में हैं। हम बोले केवल एक चांस, इतना भजन करेंगे कि इनका बस ही नहीं चलेगा। मन में ये है एक चांस, वो दे नहीं रहे हैं। इतने में बिल्कुल करीब आ गए, अनायास पीछे हटने लगे वो। तब हमें स्मरण आया कल गुरु महाराज की छड़ी हमको लगी है, तुम लोग हमको नहीं मार सकते, तुम हमें मार ही नहीं सकते। और फिर आस्ते आस्ते पीछे हटे और भाग गए। सब हमने अनुभव जब खत्म हुआ तो महाराज से पूछा। फिर हम बोले महाराज आप छड़ी क्यों मारते हो? हम बोले बवाल क्या है? तो बोले बेटा भगवान जब स्वरूप देते हैं, स्थिति देते हैं, तो हथियार भी दे दिया करते हैं कुछ। हमें जब स्वरूप मिला, स्थिति मिली, दर्शन स्पर्श और प्रवेश मिला कि यही स्वरूप है, इसी में रहना है, तो हथियार भी मिला। तुम्हारे दाहिने हाथ में ये गुण है कि आज तुम्हारी छड़ी खा लेगा तो फांसी होने वाली, कल तो फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाए। बाएं हाथ में ये गुण है जिसके सिर पे हाथ रख दोगे उसके सब कर्म हो जाएंगे। विभूति में ये गुण है कि कैसा भी दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाएगा। जबान में ये गुण है, तुम खरी खोटी जद बद सुना दोगे दत्त नालायक कहीं का हरामी तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं अटक बटक बोला करत हूँ, अन्यथा अमन सुमन के गाली देना कहाँ शोभा है, साधु के गाली देना कहाँ शोभा है। गाली देतन पावो शोभा, साधु को गाली देते शोभा नहीं है, लेकिन हमें आदेश से इसलिए मैं दे रहा हूं, यही हमें हथियार मिला है। और ऊपर से गले के ऊपर बड़बड़ बड़बड़ दे तू, भीतर एकदम साफ, न कोई गाली है न कुछ है, भीतर सने रहता है। हम बोले ओ इसीलिए डंडा मारे थे, हम नहीं मारते, हमें तो भगवान कहा नहीं कि तू डंडा मार तो फांसी कट जाई। महाराज को ही मिले थे हथियार, वही गीता वाला निर्णय। अर्जुन जनकादि ऋषि इसी कर्म को करके परम निष्क्रमी स्थिति को प्राप्त हुए। अध्याय 3। अर्जुन इस कर्म को किए बिना न सृष्टि में पूर्व में कोई प्राप्त कर पाया है, न भविष्य में कोई कर पाएगा, किंतु साधना के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। अब कर्म करने से न लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति है, फिर भी ये महापुरुष लोक हित के लिए कर्म करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं। यदि सावधान होकर महापुरुष कर्म न बरते तो समाज बरतने लग जाएगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगी। और वही महाराज प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की वाणी ही उल्टा कहें सुधा कहें कल्याण ही होता है। गुरु महाराज ने एक ईंटा नहीं रखवाया था। महाराज कहें हो शेर साधु और सर्प घर बना के नहीं रहते, बने बनाए घर में प्रवेश कर लेते हैं और फिर अपना आयु का दिन पूरा कर लेते हैं, फिर कोई और रह लेता उस जगह में। शेर सियारों की तरह कुत्तों की तरह मान खोद के नहीं रहता, बने बनाए कंदरा में जाके निवास करता है, ठाट से रहता है और आयु पूरी करके आगे बढ़ जाता है। सर्प भी बिल नहीं खोदता, जितने छिद्र हैं पृथ्वी में सब उसी के घर हैं। ठाट से अंदर जाता है, यदि कोई जीव है तो भोजन कर लेता है और ठाट से रहता है। साधु भी बने बनाए घर में प्रवेश करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता। देखो ना, भगवान ने हमको ऐसी जगह में ला के बैठा दिया, पहले से कोठड़ियां बनी हुई है, हमने कुछ नहीं बनवाया है, वो पहले से बनी हुई है, तो उसी में दो लकड़ियां गाड़ के दो एक भगत आए सामने के गांव से, उन्होंने दो दीवार में लकड़ियां खोस के पहले घास फूस छा दिया, फिर वो गिरे पड़े टीन फेंके हुए थे सिद्ध बाबा के समय के, वो टीन ला के डाल दिया, उसमें तमाम छेद थे, उनमें कंसरा के टुकड़े काट काट के डाल दें तो पानी इधर उधर फिसल जाया करे, उसी में बैठ के ठाट से भजन करें, जहां भगवान ने बैठने को कहा था उसी जगह पर, इधर की हवा आवे तो इधर बौछार लगे, उधर से आवे तो उधर लगे, बस ठाट से बैठ के गर्जा करें। बोले अखंड गद्दी है, अकाल तखत है, बस यही कहा करें। अनायास ये जॉइंट मजिस्ट्रेट चतुर्वेदी जी करवी में आए तो साधु सेवी थे, वो भटकते हुए पहुंच गए, ढूंढते हुए संत दर्शन दर्शनार्थ पहुंच गए। बोले महाराज मेरा मन है सेवा करने का, मैं कुछ सेवा करूं, महाराज के हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमारे पास कोनो कमी नहीं है। मैं विश्व की सेवा करूं तो हमार कौन सेवा करिए रे? तो बोले अरे महाराज तो हमें मालूम है, लेकिन कुछ टूटी फूटी सेवा और सोचत विचार महाराज टीना टूटे टूटे में ये। बोले हाँ मोर दुनिया बुताए दे थे बोछार यार, टीनवा दो चार और लग जा तो और का। तू गया और टीना की जगह में लिंटर ढालने का अपने मन से निर्णय करके ईंटा ला के ट्रैक्टरों से, कलेक्टर का तो ऑर्डर काफी होता है, जिनके पास ट्रैक्टर था लाल लाख के नदी उस पार गिराने लगा, इधर रास्ता ही नहीं था। तो यादव लोग दुनिया में कहीं है भगति होते हैं संतों के, वो इस पार लाने लगे। पहाड़ी नदी में भीतर पत्थर बहुत होते हैं, पत्थर में पांव रखे स्लिप करके नीचे हो जाए तो गिर पड़े, काफी ईंटा पानी में गिर गए, डूब डूब के निकाला करें घड़ी दो घड़ी तो फिर ठंडी लगे तो बाहर निकला हुए। बोले महाराज मैं कांपत हो मोर गत नहीं है और हमें का सेवा करो, वो हमें बिल्कुल सेवा का ज्ञान नहीं। हम बोले कैसी सदवाई है, कचड़ा पड़ा है तो क्या हो गया, क्यों झाड़ू लगवाया जा रहा है, हम कचड़े के ऊपर सो लेंगे बैठ लेंगे, साधु का मतलब है पड़ा है तो पड़ा है, खड़ा है तो खड़ा है, बहता पानी पी लिया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो वैसे ही रहा हो। हमारा सिद्धांत साधु होने से पहले से निश्चित था, तो ऐसे ही फकड़ों को हमने देखा था, इसलिए अब वहां बोले झाड़ू लगाओ। बोले अरे ये कौन सा दवाई, अब यहां खंबा जुड़ने लगे इसमें इन खंबा को ईटा दो। हम बोले दो आदमी इधर खड़े दो इधर, यार यहां तो संग दोष से ये काम ठीक है, डूब डूब के निकालो, किसी का संग नहीं है, बस डूबा करें निकाला करें बाहर रखा करें, तैरते हुए जाएं भजन करते करते जाएं, फिर डुबकी लगावें पांच छह ईंटा हाथ में आ जाएं, तब ध्यान धरें शुरू फिरदे में आ जाएं तो बाहर आवें, फिर भजन करते करते नदी के ऊपर ऊपर बाहर रख दें, फिर नाम जपते जपते जाएं ऊपर वहां जहां ईंटा है नदिया के बीच में, फिर डुबकी लगावें पांच छह ईंटा समेट लें, फिर ध्यान आ जाए बलि प्रकाश स्वरूप हृदय में, तब बाहर निकले। तो बाहर जब स्वरूप पकड़े तो पकड़े में नहीं आवे जल्दी, और पानी में डूब के पकड़े तो पक दे पकड़ में आ जाए, क्यों कि मन डूबे के मरे के डर के मारे जल्दी पकड़ ले। गजब का ही देखने को मिला। इसलिए महात्मा लोग कठोर और कड़ी और भयभीत जगह पर भजन करते हैं, शमशान में एकांत में शेरों की जगह में। बोले यही कारण है क्या, दिन भर ईंटा निकाला करें। लोग कहा करें महाराज ये लंठ चेला अच्छा मिल गया आप, अरे नवाड़ी हम थे ना तो फिर भाई ये गंवरगठ चेला अच्छा मिल गया, महाराजो मुस्कुरावत करे। पहले का अभ्यास था स्विमिंग पूल में सीधा मुंह के बल डाइव करे का, एक दिन मुंह के बल डाइव कर दिया और भीतर आप पत्थरों में सिर फूट गया, मार खूने खून एक चिल्लाए। अब महाराज से बोले अरे महाराज तुम्हार नवाड़ी चेला तो मुड़ फोड़ ली, आपके नवाड़ी चेले ने अपना सिर फोड़ लिया। तो महाराज लेटे थे उठ के बैठ गए, देखा खून बह रहा है, बोले हैं करे सिर में कैसे लग गई, बोले मूड़े के बल नदिया में गए रहे। तो बोले हे भगवान दुनिया गोड़े गोड़े चल के पानी में जाते मूड़े से गया, मारो सला अड़गड़ है। तो लोग हंसे, बोले महाराज ये नाम ठीक है। वो दिन से नाम पड़ गया अड़गड़। दो एक सेकंड तो हमको बुरा लगा कि ये कौन नाम। फिर हम सोचे शरीर को कोई किसी नाम से पुकारे हमारा क्या जाता है, अड़गड़ कहे बड़गड़ कहे गड़गड़ कहे हमारे जात का है। और यही नाम पड़ गया। उस टाइम बात आई गई हो गई। दो एक महीना बाद एक दिन एक भजन गुनगुनाने लगे, अड़गड़ मत है पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का, सच्चा साफ अमीरी रस्ता, सच्चे साहेब सूरों का, कच्चा यरु मटुम मेला रस्ता, कच्चे कायर पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। अड़गड़ माने कठिन, जटिल, दुरूह। ये मंत्र सूरवीरों का है, कच्चा मटमैला रास्ता कायर और बुजदिलों का है। हम सोचे अरे ये उटांग पटांग शब्दों का भी अर्थ होता है क्या। फिर पूरा भजन सुना लेंगे तब हम सोचे अच्छा इसका भी अर्थ है। पूरा भजन सुनाया, अंतिम लाइन थी, बड़ा देव गादी पर बैठा, तब क्या ढोना घूरों का, मस्त हुआ जबान हद सुनकर, तब क्या सुनना तूरों का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई सूरों का, अचिंत्य है अगोचर है चित से परे, इंद्रियों की दृष्टि पथ से परे, जो अनुभव गम्य है वो मत कोई सूरवीरों का है। वो सूरवीरों का पथ है। बस हम खुश हो गए यार, नाम तो कुछ हो नहीं रहा लेकिन अर्थ तो लाजवाब लग रहा है। इसका अर्थ अमृतवाणी कैसेट में है। ऐसे ही गुरु महाराज, एक महात्मा का नाम रख दिया बग्गड़, एक का नाम रख दिया झंझटानंद भगवान आनंद जी का, दारकुंडी महाराज का नाम सच्चिदानंद, और जब नाराज हुए तो बने बदामे का बकला। दो नाम सबका रहे लेकिन बढ़िया बढ़िया नाम सबके हिस्से में पड़ गए। हम जब पहुंचे रहे तो महाराज पर नाम यह बचारा। गुरु महाराज का कहना था रोग भी एक संस्कार है। गुरु महाराज की शरण में आ गए, उसके पश्चात हमें चढ़ा एक बार बुखार, अभी एक ही दो दिन हुआ था, भयंकर बुखार, और 105.6 तक पहुंच गया। सिर के नीचे चावल ऐसी ढेरी बन जाए, हम सोए नहीं जाग रहे हैं, उस ढेरी के दबाव से सिर ऊंचा हो जाए जैसे तकिया लगे, और 50 करीब आदमी ऊपर खड़े हैं सिर के चारों तरफ, हम पहचान रहे हैं वो हमारे घर वाले हैं, और कुछ को हम नहीं पहचान रहे लेकिन उनकी हमारे अंदर पूरी ममता है, पूरा अधिकार है उनका। फिर एक साथ 50 आदमियों के हाथ पड़े, यूं एक एक दाना सिर समेत काट कूट के बांट लें, एक एक दाना उठा लें जमीन से, और हम मर जाएं, श्वास बंद लेकिन जानकारी बनी रहे। तब आस्ते से हाथ उठ के जाए सिर में कि सिर है कि नहीं, सिर के ऊपरी भाग रोआ में जहां छू जाए सन्नचेत हो जाए। हम बोले यार अभी तो बच्चे हैं, हम सोचे सिर कटकुट के गया, फिर सचेत होके एकदम लेटे रहे। उठ के बैठने की अभी ताकत नहीं है, हिम्मत। फिर दोबारे ऐसी ही देरी बनने लगी। हम भली प्रकार सचेत हैं और सिर उठता चला गया। सिर उठ गया करीब एक फीट ऊंचा, यूं ऊपर उठ गया तिरछा, और हम देख रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं। वो पचासों हाथ एक साथ गिरे सिर के ऊपर, ये जबड़ा, कान, पूरा मुंह, पूरा सिर, रोआ रोआ, हड्डी हड्डी सब बांट लिए। सिर समेत चावल का एक एक दाना बांट लिए। और यहां से कंधे के पास से सिर गर्दन सब साफ। फिर मर गए, श्वास बंद। ये करीब एक मिनट रहा तो हमारा हाथ आस्ते से उठ के गया कि सिर है कि नहीं। फिर रुआ से छुआ सिर के ऊपरी भाग में, फिर चेत हो आया। हम बोले यार दो बार तो बच गए, तीसरी बार धरे के धरे न रह जाए। तो हम किसी से उठ के गए गुरु महाराज के पास। यहाँ हम लेटे हैं, वहां जो आप बैठे हो इतनी दूर गुरु महाराज रहे इस दरवाजे के बाहर से जाके यहाँ धुनी पर। हम बोले गुरु महाराज ऐसा ऐसा दिखाई पड़ा, दो बार तो हो चुका, और जो आते हैं सिर काटने वाले वो सब घर वाले हैं। हम भली प्रकार पहचान रहे हैं, कोई चाचा है, कोई है, ऐसे हैं जिनको हम नहीं पहचान रहे हैं, उनका पूरा हक है इस सिर में, हम में। और वो खट बांट लेते हैं और हम मर जाते हैं। दो बार तो महाराज मर के बच गए, अब की कहीं हाथ पड़े मरे के मरे न रह जाए। तो बोले बेटा ये बदले हैं, उस घर में जन्म इसीलिए हुआ कि बदला था, अभी कुछ बदला बाकी है। तो छोड़ के चला आया तो बुखार के द्वारा वो बदला वसूल कर रहे हैं तुम्हारा। अरे हम बोले महाराज किसी बार सिर कटा के कटा, श्वास बंद की बंद न रह जाए। बोले कहा विभूति, मारा दुई झापड़ सिर में, थर्ड थर्ड दोनों तरफ से। बोले जो अब कुछ नहीं हुई, बस बुखार भी उतर गया और फिर घर वाले नहीं आए सिर काटने। तू कहीं भी जन्म होता हो भी एक बदला है, एक संस्कार है। शुरू ही शुरू में हम सोचा करें, भजन छोड़ के दूसरा संकल्प, नाम छोड़ के न आवे, स्वरूप देखें तो दूसरा दृश्य न आवे, बस भजन करें, ये सेवा करो, ये करो, ये क्या। तो उधर ध्यान न दें। एक दिन अनुभव में हमको आया, तुम्हारी अपेक्षा ये जो सेवा कर रहे हैं इनकी साधना और उन्नत है। तो हम बोले अरे ये खाली सेवा कर रहे हैं, मैं रात दिन भजन कर रहा हूं, हमारी अपेक्षा इनकी साधना उन्नत है। तब फिर दिन को 12 बजे झाड़ू लेके हम लगावा करें वहां सड़क पर। गुरु महाराज कहते हैं ये बुरबके के देखो तो, करे झाड़ू सवेरे लगते एक दिन को 12 बजे। हम कहे महाराज कचरा तो साफ हो ही जाता है, हमें झाड़ू से का मतलब, हमें तो सेवा से मतलब है। उस दिन से फिर सेवा में मन लगने लगा आस्ते आस्ते। गुरु महाराज गर्म पानी पिया करे, तो गर्म पानी को साफ सुथरी थाली किसी ने दाल की बोटली पे रख दिया था एक मिनट दो मिनट के लिए, तो काली नीचे लकीर पड़ गई थी। अरे गर्म पानी रखो तो लकीर नहीं पड़ जाती है, तो हम सोचे खाना तो किसी ने खाया नहीं है, काली लकीर यदि नीचे करता हूं तो ये इस लकीर में कोई मैल जरूर होगा, वो गुरु महाराज के गर्म पानी से धुल कर पानी में जाएगा। हमने उल्टी रख दिया साफ ऐसे, जहां महाराज की निगाह पड़ी तो हम नीचे खड़े थे, ऊपर से अद्धा उठा के खींच के मारा पांव में, वो घाव आज भी है। तो हमने देखा महाराज कोई गलती हो गई क्या, फिर सर्वा कहते गलती हो गई का, जूठी थाली से मोर पानी ढांप दिया। हम बोले महाराज जूठी नहीं है, हमने भली प्रकार देखा उसको, इसमें किसी ने खाना नहीं खाया है। हम जूठी उससे समझते थे जिसमें किसी ने खाना खाया हो। तो उठा के बोली का काला दाग है रे, हम बोले ये तो दाल में ढांपने से लग गया। बोले अबे साधुवन का बर्तन नहीं देखे तू, कहीं भी हल्का सा दाग है उसका नाम है जूठा। हम बोले ओ आज पता चला हम जूठे मार खा गए यार। फिर महीने भर से गांव ठीक हुआ और तब समझ पाए कि दाग का नाम है जूठा। पहले हम समझते थे कोई खाना खा लिया वो जूठा, संतों का बर्तन देखे नहीं है। अभी आहिस्ते आहिस्ते संस्कृत तो हमें मालूम नहीं थी, गीता पढ़ने का हमें आदेश हुआ कि तुम्हारे सब संस्कार खत्म हो गए, केवल एक संस्कार बाकी है, सारी वृत्तियां समाप्त हो गई, केवल एक वृत्ति बाकी है गीता लिखना। और वो वृत्तियां हमारे पास से हमें छोड़ के वो चली जा रही है, हम देख रहे हैं, और एक हमारी परिक्रमा कर रही है छोटी सी उर की वृत्तियां ऊंट के रूप में है, सारे ऊंट वो चले जा रहे हैं, एक इतना सा हमारा परिक्रमा कर रहा है। हम बोले वो क्या, बोले गीता लिखना, और संस्कृत बिल्कुल नहीं मालूम। जब संस्कृत की गीता को देखा तो आधा ते आधा में आधा के आधा छे, हम सोचे लिखना भूल गया लगता है। फिर सोचे अच्छा तो ये बंगाला जादू होगा, ये किचर किचर लिखा काट काट के, वो अर्थ लिखा रहे महात्म में, पहला अध्याय पढ़ो बैकुंठ जाओ, दूसरा पढ़ो स्वर्ग जाओ, तीसरा पढ़ो राजा हो जाओ, ये गपोड़ा बड़ा अच्छा लगे। अब हम सोचे बैकुंठ शायद कोई नगरी होगी, जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही कहीं जगह होगी। और फिर हम सोचे राजा हो जाए क्या बने, समझ में नहीं आवे। बाद में महात्माओं से परामर्श किया तो पता चला कि अधकटा अधकटा लिखा यही है गीता। हम बोले बेड़ा पार हो गया, ये तो इस जन्म में कभी समझ में नहीं आएगा। तब इसका अर्थ किया तो एक अनव्या अर्थ गीता देखने को मिल गई। हम बोले हमारे पास होती तो हम समझ पाते इस एक एक वाक्य का अर्थ क्या है। तो मन में अनव्यार्थ गीता लेने की चिंता हो गई। उस समय बारह आने की मिलती थी गीता प्रेस वाली, हमें ये भी नहीं मालूम कि चित्रकूट में भी दुकान हो सकती है, हमें इतना अंदाज था कि इलाहाबाद में दुकान है। तो बारह आने की गीता और थोड़ा पैसा आने जाने का लगेगा, ढाई रुपया लगना चाहिए, ढाई रुपया मिल जाता तो हम गीता ले लेते। ढाई रुपया रोज रटा करें, ढाई साल बीत गया किसी ने ढाई रुपया हमें दिया ही नहीं। महाराज को जो कोई रुपया भी सन्ना चढ़ा जाए वो हम ही रखा करें, इसलिए महाराज का हम कैसे ले लें, वो छू नहीं सकते, गद्दा उठा के उसके नीचे फेंक दिया करें। फिर हमने इरादा त्याग दिया, हम भजन छोड़ के कहां गीता के चक्कर में पड़ गए, पोथा पढ़ने से क्या होता है। शाम को इरादा त्यागा, अब हमें गीता नहीं चाहिए। बड़े सवेरे जंगल घूम के आए, यहाँ महाराज विराजमान है, पास वाली कोठड़ी के चौखट पर गीता रखी हुई थी। तो हम सीधे निगाह पड़ी तो उधर बढ़े, गीता उठाया। हमें पहले प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन गीता बाहर से तो हमने त्याग दिया, मन में भरी हुई थी, तब तो पांव उधर घूम गए। गीता उठाया, हमने कहा महाराज ये किसकी है? बोले तू ही तो पड़वैया है और किसकी है? देखो बुरबके की तरह पूछे थे किसकी है, देखो एक बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछे थे कि किसकी है, तोरे तो है, तू ही तो पड़वैया और के है पड़वैया। हम बोले जय भगवान की, 2.5 साल हो गया ढूंढे तब नहीं मिली, आज हमने इरादा त्याग दिया, गीता नहीं चाहिए तो पढ़ी मिल गई यहीं पर, रात में कोई आया भी नहीं, पता नहीं कौन रख गया, व्यक्ति आया ही नहीं। ऐसे बहुत सी अनहोनी घटनाएं घट गई, बैठे बैठे जंगल में गीता की आपूर्ति हो गई। अब महाराज कहें तू के गीता लिखना है, मौके पढ़ के सुना तो ये गीता प्रेस वाली। हम सुनाते गए, महाराज के दे तेरी जयदाल गोविंद का जी के आशीर्वाद जरूर दें, भर्रो मचाए पड़ा है, ऐसे नहीं रे, ऐसे न रहते, पढ़े लिखे तो थे नहीं महाराज, 3 दिन तो स्कूल गए थे, अर्थ सटीक बता रहे। क्यों महाराज? एक बार पूरी पढ़ ले गए बस उतनी ही शिक्षा थी। महाराज कहें हो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मा अंग्रेजी हो जानत है, कोई इंग्लिश में बात करे मैं बता दूंगा कि इसके मनोगत भाव क्या है, मुके भगवान पढ़ावा करते। जब गुरु महाराज अनुसुईया में अकेले कोई नहीं, इधर बड़े छे हाथ लंबे सर्प, इधर अजगर बैठ पड़े हैं, भालू कोठड़ियों में ऊपर नीचे, शेर घूम रहे हैं। ओ महाराज को भगवान का आदेश था कि तुम्हें यहां रहना है, जन्म भर यहीं रहना है, भगवान चाहे तो शेर की गुफा पर बैठा सकते। सत्संगी महाराज का एक उपदेश था ठोस, दुनिया में सबसे गरीब कौन है? तो लोग कहें कन्या, चाहे गरीबे के घरे हाथ पकड़ा दो ब्याह दो तू बेचारी चली जाएगी, चूं नहीं करेगी, चाहे बुढ़े को ब्याह कर दो तब भी चली जाएगी। क्या थी झांसी की रानी? वो 55-56 साल का बुढ़ा राजा और 14 साल की लड़कियां, ब्याह हो गया ना, गई लेकिन झांसी को संभाल दिया, कन्या होगी तो क्या, उससे भी गरीब। तो बोले गाय, चाहे कसाई को पकड़ा दो बेचारी चली जाएगी कट जाएगी, बोले उससे भी गरीब। बोले उससे गरीब कौन है? बोले वो साधु जिसके हृदय में भजन जागृत है, इष्ट देव रथी है, भगवान उठा के शेर की गुफा में बैठा दे तो उसको बैठना पड़ेगा, कदाचित आज्ञा का रंच मात्र भी उल्लंघन कर दिया तो फिर खैरियत नहीं, एकाद जन्म का झटका लग जाएगा, कि भगवान की सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सबसे गरीब वो साधु है जिसके हृदय से आत्मा जागृत है, भगवान रथी होकर मार्गदर्शक के रूप में खड़े हैं, वो कह दे यहाँ पांव रखो और 1 इंच भी उसके इधर उधर रखा तो फिर वो आज्ञा उल्लंघन कहलाता है। भगवान जहाँ रखते हैं वहाँ रक्षा भी करते हैं, उल्लंघन कर दिया तो असुरक्षित है, भगवान के आदेश का पालन ही सुरक्षा है। तो रेख लंग सी बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई, ये हर साधक के लिए लागू होता है। एक चेला बोला हम गया जाओ, महाराज सोचिए ससुरा मुक्ति भक्ति तो हमारे पास ही, गया का करे जाइए। तो गुरु महाराज ने मना किया तो मान गया, फिर 10 दिन बाद कहे हम गया जाब, फिर डांटा तो मान गया, फिर गया जाब तो बोले कहा गया कि सनक सवार हो गया। महाराज ने ध्यान से देखा तो एक सेठ के यहाँ 8-10 दाना बाकी था पिछले जन्म का, वही अन्न जल खींच रहा इसलिए जा रहा है। ये मर्द खपत जाई और पेट भर भोजनों ने मिली। गुरु महाराज ने प्रेरणा किया, वो सेठ वहीं पहुंच गया तीर्थ, उसमें तीर्थ करने की प्रेरणा जागृत हुई, चल दिया तीर्थ करने। घूमते फिरते चित्रकूट आ गया और वहीं गुरु महाराज के आश्रम में और पॉकेट में हाथ डाला, रुपया 20 आना चढ़ाने के लिए तो 10-15 दाना चना भी गिर गया। चना गिरा तो महाराज की निगाह पड़ी, बोले हैं चना कहाँ से आये हो? बोले महाराज मैं गया से आया हूँ, वहां का सेठ हूँ। बोले दाना जो गिरे समेट के हमको दो? बोले अरे नहीं महाराज, गाड़ी में से मैं एक बोरा मंगवा देता हूँ। बोले बोरा रहने दे अपना, ये समेट के हमके दे। तो फिर सब सिमटवाया, 10-15 दाना जो थे पुड़िया बांध के रख दिया, सेठ दर्शन किया आशीर्वाद लिया और चले भी गए। और चेला जब जंगल घूम के आया तो बोले देख रहे वो रखा पुड़िया में प्रसाद, खा ले हमारे सामने, और मुंह में डाला चबा लिया पानी पी लिया। फिर गया जाने का नाम न ले, बोले करे गया हो ले। बोले महाराज पता नहीं क्या हो गया, अब तो गया जाए का मन नहीं करे थे। बोले ससुरा वो अनजल खींचत रहा, मर्द खपत पहुंचता पेटों नहीं भरता, वो अनजल खत्म हो गया। तो जैसी हो बहुत तबिता तैसी मिले सहाय, आपन जावे ताई पां ताई तहां ले जाए। अनजल भी खींचा करता है।
गुरु महाराज की एक ही कविता है बारहमासी। एक दिन बोले हो आकाश बोलत है, मैं कैसे बताऊं, 3 दिन से बोलत है और मैं सुनत जात हूं, मुके याद हो जाते आकाश बोलत है, तुम लोग याद कर लो हमें भूल जाएगी। तो फिर महाराज गुनगुनाने लगे, सब लोग जित थे याद कर लिया। लावनी सुन बारे मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी, चैत में चिंता ये कीजे, ये तन घड़ी घड़ी छीजे, इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार, सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। 12 महीनों की 12 पंक्ति है, 12 मासी एक किताब है। हम तो थे नहीं जब ये घटना घटी, हम आए तो ये चर्चा का विषय था। महाराज जो महाप्रयाण को प्राप्त हो गए, 2 साल बाद हमने देखा कि महाराज की विद्या तो सब भूल गए, महाराज का नाम तो कोई ले ही नहीं रहा है, महाराज की ब्रह्म विद्या किसी की जवान पर नहीं है, महाराज की नाम भी तो नहीं है, महाराज की साधना भी किसी के नाम पर नहीं है, सब ईटा पत्थरा में उलझ गए। साधु फंसे ईंटन में, गृहस्थ फंसे चीटन में, ये तो आफत कर दिया। तब हमारे मन में ये भाव आया, कम से कम गुरु महाराज की जीवनी तो हमें याद है, हम लिपिबद्ध कर दें। बोल दिया, इस टाइम जो जीवन आदर्श है ये गुरु महाराज की जीवनी है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।